नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर चर्चा करने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान। ये किताब भारत के प्राचीन ज्ञान और दुनिया पर उसके असर को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें सामने रखती है।
बिल्कुल। और इसका जो मूल विचार है वो ये कि प्राचीन भारत की महानता सिर्फ कोई भौतिक चीजों में नहीं थी।
हाँ, मतलब सिर्फ इमारतें या व्यापार ही नहीं।
नहीं, बल्कि गुण, कर्म, स्वभाव और जिसे लेखक ने आत्मीयता का विस्तार कहा है, उसको पूरी इंसानियत तक फैलाना।
इसे दैवी संपत्ति कहा गया है ना?
हाँ बिल्कुल, यही उनका केंद्रीय तर्क है।
तो चलिए इसी नजरिए से देखते हैं कि ये किताब भारत के वैश्विक अनुदानों मतलब दुनिया को क्या क्या दिया, इस बारे में क्या खास बताती है। कहाँ से शुरू करें? शायद व्यापार और समुद्री ताकत, उस जमाने की नेवी।
हाँ हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। किताब में जिक्र आता है प्राचीन भारत की विकसित जल सेना का और व्यापारिक पहुँच का भी।
अच्छा।
जैसे बताया गया है कि केरल, चोल, पांड्या राज्यों के जहाज वो ग्रीस, रोम, चीन तक व्यापार करते थे। और एक बात तो मुझे काफी मतलब अनोखी लगी कि मिस्र के पिरामिडों में जो कुछ पुरानी ममीज मिली हैं,
हाँ,
वो कथित तौर पर भारतीय मलमल में लिपटी हुई पाई गई हैं। पुस्तक में ऐसा दावा है।
अरे वाह। और चंद्रगुप्त मौर्य की नौसेना, उसका भी जिक्र है।
हाँ, उसका भी जिक्र है। और चाणक्य के अर्थशास्त्र में जो समुद्री व्यवस्था पर लिखा गया है उसका भी हवाला दिया गया है।
तो ये तो हुई व्यापार और समुद्री ताकत की बात, लेकिन किताब शायद सांस्कृतिक और वैचारिक फैलाव पर ज्यादा जोर देती है।
बिल्कुल सही, उस पर काफी जोर है। और इसमें कुछ दावे तो बहुत ही कह सकते हैं ध्यान खींचने वाले हैं।
जैसे कि?
जैसे ये पाताल लोक की जो हमारी पौराणिक कल्पना है,
हाँ,
उसे किताब में अमेरिका या दूसरे दूर के महाद्वीपों से जोड़ने की कोशिश की गई है। माना गया है कि शायद अहिरावण जैसे पात्र वहीं रहते थे।
अच्छा, ये तो बहुत ही अलग व्याख्या है।
हाँ है। तो और भी हैं, जैसे एक दावा है कि कर्ण ऋषि मिस्र गए और वहाँ के लोगों को संस्कृत बनाया, मतलब सभ्य बनाया। या फिर मंगोल जाति का मूल भी आर्यों से ही बताया गया है।
और वो मेक्सिको की माया सभ्यता वाली बात, उसका भी जिक्र है।
हाँ हाँ, पुस्तक ये भी कहती है कि मेक्सिको की जो मशहूर माया सभ्यता है उसके विकास में भी कहीं ना कहीं भारतीय प्रेरणा थी।
अच्छा।
और लेखक ने अमरीकी विचारक विल ड्यूरेंट का भी जिक्र किया है, जिन्होंने भारत को सिर्फ एशिया नहीं बल्कि एक तरह से अमेरिका की भी माता माना।
अरे, किस संदर्भ में?
खासकर गणतंत्र प्रणाली और बौद्ध विचारों के प्रभाव के संदर्भ में। पुस्तक कहती है कि इन विचारों का असर ईसाई धर्म पे भी पड़ा। ये सब किताब में दिए गए विचार हैं जिन पर पाठक सोच सकते हैं।
हाँ ये तो है, बौद्ध धर्म का प्रसार, ये तो यकीनन एक बहुत बड़ा विषय है इसमें। इस पर किताब क्या कहती है?
हाँ, इस पर विस्तार से बात की गई है। पुस्तक मानती है कि बौद्ध धर्म असल में वैदिक धर्म के ही जो मूल सिद्धांत हैं, विवेक, न्याय, एकता, उन्हीं का एक तरह से विस्तार है।
अच्छा।
और इसमें सम्राट अशोक के योगदान का खास तौर पर जिक्र है। उनके प्रयासों से ही ये धर्म यूनान, मध्य एशिया जैसे खोतान, कूचा, फिर चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला।
क्या इसमें किसी खास व्यक्ति या घटना का उदाहरण भी दिया है?
हाँ बिल्कुल, जैसे कुमार जीव जैसे भारतीय विद्वानों का नाम लिया गया है। उन्होंने बड़ी संख्या में बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया।
अच्छा।
कहते हैं कि इसी वजह से चीन में हजारों विहार और स्तूप बने, और इसका असर सिर्फ धर्म पर ही नहीं चीन की कला पर भी दिखता है, जैसे गुफाओं के भित्ति चित्रों में।
और दर्शन पर भी?
हाँ, दर्शन पर भी। यहाँ तक कि अमेरिकी दार्शनिकों जैसे एमर्सन और थोरो पर भी भारतीय विचारों का प्रभाव बताया गया है।
और दक्षिण पूर्व एशिया, वो कंबोडिया और इंडोनेशिया के विशाल मंदिर, उनका जिक्र तो जरूर होगा।
हाँ, कैसे नहीं होगा। कंबोडिया का अंकुरवाट मंदिर और जावा यानी इंडोनेशिया का बोरोबुदुर स्तूप।
जी,
इन बड़े बड़े निर्माणों को भारतीय कला, आर्किटेक्चर और संस्कृति का जीता जागता सबूत माना गया है पुस्तक में।
और वो रामायण महाभारत की कथाएं, वो आज भी वहां जीवित हैं।
हाँ बिल्कुल, किताब बताती है कि रामायण और महाभारत की कहानियां आज भी इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों की जो नृत्य नाटिकाएं हैं उनका एक जरूरी हिस्सा है।
ये तो हुई प्राचीन और मध्ययुगीन प्रभाव की बात। क्या किताब आज के जमाने में भी मतलब आधुनिक युग में भी भारतीयों के योगदान या उनके प्रवास की बात करती है?
हाँ करती है। लेखक इस तरफ भी ध्यान दिलाते हैं कि सिर्फ पुराने जमाने में ही नहीं बल्कि आधुनिक युग में भी लाखों भारतीय मजदूर के तौर पर, व्यापारी बनकर, शिक्षक बनकर दुनिया के कोने कोने में पहुंचे। अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, सूरीनाम, बहुत से देशों में।
और वहां उन्होंने अपनी संस्कृति बचाए रखी।
किताब के अनुसार उन्होंने कोशिश तो बहुत की, मुश्किल हालात में भी अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन जाहिर है इसमें चुनौतियां भी बहुत रहीं।
लेकिन किताब सिर्फ तारीफ ही नहीं करती है ना, भारत की अपनी कमजोरियों का भी जिक्र है शायद।
हाँ, ये एक बहुत जरूरी पहलू है। किताब इस पर भी रोशनी डालती है कि भारत की जो अंदरूनी फूट थी, सामाजिक बुराइयां थी, जैसे जाति का भेदभाव, आपसी तालमेल की कमी।
हाँ, ये तो ऐतिहासिक समस्याएं रही हैं।
बिल्कुल, और इन्हीं कमजोरियों ने बाहरी ताकतों को यहाँ पैर जमाने का मौका दिया। लेखक का संदेश साफ है कि अगर सच में तरक्की करनी है तो पहले अपना घर ठीक करना होगा। आत्म सुधार जरूरी है
और विश्व कल्याण की भावना भी साथ रखनी होगी।
हाँ, दोनों को साथ लेकर चलना होगा।
तो संक्षेप में कहें तो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की ये किताब भारत को एक ऐसे प्राचीन केंद्र के रूप में देखती है जिसने अपने विचारों, अपने दर्शन, धर्म और संस्कृति से दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर गहरा असर डाला।
हाँ बिल्कुल, ये उसका मुख्य बिंदु है, लेकिन साथ ही ये हमें आज के लिए सोचने पर भी मजबूर करती है।
किस तरह से?
देखिए, एक तरफ तो किताब में ये ऐतिहासिक वैश्विक भूमिका बताई गई है और दूसरी तरफ आज की जमीनी हकीकतें हैं, हमारी अपनी चुनौतियां हैं।
सही बात है।
तो इन दोनों को देखते हुए आज की दुनिया में भारत का स्थान क्या होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं?
ये एक बड़ा सवाल है।
हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर किताब सीधे जवाब नहीं देती, बल्कि पाठक को खुद सोचने, मनन करने के लिए छोड़ देती है।